राजवंश महल, सुबह का समय था। अभिमन्यु अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसने अपने कमरे के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। उसकी माँ कमरे में आई। अभिमन्यु ने अपनी माँ को देखते ही बिस्तर से उतरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मासा, आप इतनी सुबह सुबह हमारे कमरे में आई, क्या कोई काम था आपको? आप हमें बुला लेती? मासा मुस्कुराई और अभिमन्यु के सामने खड़ी होकर बोली, काम तो बहुत जरूरी था, पर हमने सोचा हम खुद ही आपसे मिल लेते हैं। अभिमन्यु ने बिस्तर पर थोड़ा साइड हटते हुए कहा, बैठिए मासा, क्या बात है बताइए। मासा आराम से बैठ गई और बोली, अभिमन्यु, हम कल शाम से आपसे बात करने का मौका ढूंढ रहे थे। दरअसल हमें आपसे ये पूछना था कि कल आप इप्सिता से मिलकर आए थे, अगर वो आपको पसंद आई है तो हम शगुन की थाल सूर्यवंशी परिवार में भेज दें। अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, मासा, इसमें हमसे पूछने वाली क्या बात है, आपको जो ठीक लगे आप वही करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मासा ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हमें आपसे भी तो पूछना था कि आप क्या चाहते हैं। अभिमन्यु ने मासा का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हम वही चाहते हैं जो हमारी मासा चाहती हैं, इसलिए आपको जो ठीक लगे आप वही करिए। मासा मुस्कुराई और बोली, हमें आपसे यही उम्मीद थी अभिमन्यु, आप हमेशा हमारी उम्मीद पर खरे उतरते हैं। अभिमन्यु मासा की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी मासा बोली, अभिमन्यु, हमने दो दिन बाद सगाई का दिन तय किया है, ठीक है ना? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मासा खुश होकर बोली, तो फिर ठीक है, हम आज ही शगुन सूर्यवंशी परिवार में भेज देंगे और उनसे बात करके दो दिन बाद सगाई का सबसे अच्छा मुहूर्त ये भी उन्हें बता देंगे। अभिमन्यु ने फिर से सिर हिलाया। मासा ने अभिमन्यु के गाल पर हाथ फेर कर कमरे से बाहर चली गई। मासा के बाहर जाते ही अभिमन्यु ने एक ठंडी सांस ली और अपने मन में कहा, मासा तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रही हैं, लेकिन आज नहीं तो कल ये तो होना ही था, आखिर और कितने दिन टाल सकते थे हम इन बातों को। वैसे भी कुंवर होने के नाते ये हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी, आज नहीं तो कल पूरी करनी ही होगी, तो फिर अभी ही ठीक है। इतना कहकर वो भी अपने बिस्तर से उठ गया। सूर्यवंशी हवेली में इप्सिता तैयार होकर कमरे से बाहर निकली और नीचे उतरी। उसने देखा कि उसके माँ बाप किसी से फोन पर बात कर रहे थे और उसका भाई उदय अकेला नाश्ता कर रहा था। इप्सिता उदय के बगल में बैठकर बोली, गुड मॉर्निंग भाई। उदय मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। इप्सिता ने पूछा, वैसे भाई, मॉम डैड इतने एक्साइटेड होकर किससे बात कर रहे हैं, ऑफिस की कोई मीटिंग है क्या? उदय ने सिर हिलाकर ना कहा, नहीं, वो तो तुम्हारी होने वाली सासू माँ का फोन है, उनसे ही बात हो रही है, आजकल कुछ ज्यादा ही बातें होती हैं दोनों परिवारों में। इप्सिता ने ये बात सुनते ही चेहरे से मुस्कान गायब कर ली और चुपचाप नाश्ता करने लगी। उदय ने इप्सिता के चेहरे के भाव देखे और कुछ बोलने ही जा रहा था कि उससे पहले ही इप्सिता के माँ बाप एकदम एक्साइटेड होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। इप्सिता के पिता ने गंभीर आवाज में कहा, पता है इप्सिता बेटा, राजवंश महल से रानी सा का फोन आया था, उन्होंने दो दिन बाद तुम्हारी और कुंवर सा की सगाई फिक्स कर दी है। इप्सिता और उदय दोनों हैरान रह गए। इप्सिता बोली, लेकिन मम्मी पापा, दो दिन बाद, इतनी जल्दी क्यों? इप्सिता की माँ खुश होकर बोली, हाँ बेटा, हमें भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन सच में ये बहुत खुशी की बात है और हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम इन दो दिनों में इतनी सारी तैयारी कैसे करेंगे। इप्सिता के पिता आराम से बोले, सुहासिनी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रानी सा ने पहले ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो ये सगाई सिर्फ घर वालों के बीच करवाएंगी, ज्यादा मेहमान नहीं होंगे, हमारा परिवार और कुंवर सा का परिवार, बस सब कुछ बहुत आराम से हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। सुहासिनी जी परेशान होकर बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और हमें तो आज ही शॉपिंग पर भी जाना पड़ेगा, इप्सिता तुम भी हमारे साथ चलना। इप्सिता ने अपनी माँ बाप की बात सुनकर कुछ नहीं कहा, वो गहरे विचारों में डूबी हुई थी। लेकिन उदय ने अपने माँ बाप की बात बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी पापा, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दबाजी में इप्सिता की सगाई करना ठीक होगा, आखिर इतनी भी क्या जल्दबाजी है कुंवर सा की घर वालों को जो वे इतनी हड़बड़ी में सगाई कर रहे हैं। उदय की बात सुनते ही इप्सिता के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है और शुभ कामों में देरी करना ठीक नहीं होता, इसलिए नाश्ता करो और तुम सीधे ऑफिस के लिए निकलो, मैं शायद आज ऑफिस ना आ पाऊं। इप्सिता की माँ ने इप्सिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर पूछा, क्या बात है इप्सिता, आप क्या सोच रही हैं? इप्सिता ने सोचते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस हम ये पूछने चाहती हैं कि क्या हम अपनी सगाई में अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुला सकती हैं। इप्सिता की माँ हंसते हुए बोली, ये भी कोई पूछने वाली बात है भला, बुला लो, आखिर तुम्हारी दोस्त तो बनती है कोई। ओके, थैंक्स मम्मी, जबरदस्ती की मुस्कान के साथ इतना बोलकर इप्सिता चुप हो गई। दो मिनट बाद एक सुरक्षा गार्ड भागता हुआ हवेली के अंदर आकर बोला,
बड़े मालिक, राजघराने के कुछ लोग आए हैं बेबी जी का शगुन लेकर। सुहासिनी जी ने इप्सिता के पिता की तरफ देखते हुए कहा, रानी सा ने इतनी जल्दी शगुन भी भेज दिया? इप्सिता के पिता ने कहा, हाँ सुहासिनी जी, अभी रानी सा ने मुझे कहा था कि वो शगुन भेज चुकी हैं। सुहासिनी ने सामने खड़े सुरक्षा गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, जाओ जल्दी जाओ, उन लोगों को अंदर भेजो। इप्सिता और उदय गेट की तरफ देखने लगे। देखते ही देखते 10-12 लोग एक साथ हवेली के अंदर आए। उन सब ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। उन सभी के हाथ में बड़ी बड़ी पीतल की थालें थीं। उन सभी थालों में कपड़े, जेवर, फल, मिठाइयां थीं। तभी मुख्य द्वार से मुनीम जी अंदर आए और उनके पीछे उनका एक खास आदमी चल रहा था, जिसके हाथ में एक चांदी की बड़ी सी थाल थी और उस पर पर्पल कलर का एक लहंगा रखा हुआ था। मुनीम जी को देखते ही इप्सिता के पिता आगे बढ़े और उन्होंने मुनीम जी से हाथ मिलाते हुए कहा, मुनीम जी कैसे हैं आप? मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, बहुत अच्छा हूँ। रानी सा ने इप्सिता बिटिया के लिए ये शगुन भेजा है और ये रहा इप्सिता बिटिया का सगाई का जोड़ा। जैसे ही सुहासिनी जी ने उस चांदी की बड़ी सी थाल में इप्सिता का सगाई का जोड़ा देखा, वो खुश होकर बोली, बहुत ही खूबसूरत लहंगा है। मैं तो इप्सिता को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने वाली थी, लेकिन शायद रानी सा चाहती हैं कि उनकी होने वाली बहू उनकी पसंद का लहंगा पहने। मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर इप्सिता बिटिया सूर्यवंशी परिवार की नहीं बल्कि राजवंशी परिवार की बहू बनने वाली है, तो सब कुछ रानी सा के मुताबिक ही करना होगा। वैसे हमारी इप्सिता बिटिया है तो बड़ी ही किस्मत वाली। मुनीम जी ये सारी बातें कर ही रहे थे कि इप्सिता ने उस पर्पल कलर के लहंगे की तरफ देखा और सीधे अपने कमरे में चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर मुनीम जी मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया शायद शर्मा गई है। इप्सिता को इस तरह जाते देखकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। तभी इप्सिता के पिता ने कहा, आइए मुनीम जी बैठिए। मुनीम जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं अब मैं चलने की इजाजत चाहूंगा, रानी सा का हुक्म था इसलिए मैं खुद शगुन लेकर आया, लेकिन अब मैं इजाजत चाहूंगा। और आप लोगों को भी तो सगाई की तैयारी करनी होगी, मैं अपनी औपचारिकता में आप लोगों को बिजी नहीं करना चाहता। मुनीम जी की बात सुनकर इप्सिता के माँ बाप भी कुछ नहीं बोले और मुनीम जी वहां मौजूद सभी लोगों के साथ वापस चले गए। सुहासिनी जी आए हुए शगुन को देखकर थोड़ा सोचते हुए बोली, अमर, रानी सा ने इतने कम समय में इतना अच्छा शगुन भेजा है, अब तो हमें और भी ज्यादा अच्छी तैयारी करनी होगी, हम भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इप्सिता के पिता ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, ये भी कोई कहने की बात है, चलिए काफी सारी तैयारियां करनी है।
उदय अपने माँ बाप को इस तरह सगाई की तैयारी में लगते देखकर अपने मन में बोला, इन्हें तो अपने बच्चों की खुशी की पड़ी ही नहीं है, इन्हें तो बस हर तरह से अपना फायदा चाहिए और दिखावा ऐसे रहे हैं जैसे कि हमारे लिए सब कुछ करते हों और ये सब कुछ हमारी खुशी के लिए कर रहे हों। लेकिन क्या इन लोगों को नजर नहीं आ रहा कि इप्सिता सबसे जरा भी खुश नहीं है? इतना बोलकर उदय ऑफिस के लिए निकल गया। वहां इप्सिता ने नंदिनी को मैसेज किया, 2 दिनों में हमारी सगाई होने वाली है, क्या तुम उदयपुर आ सकती हो? इप्सिता काफी ज्यादा परेशान थी, इसीलिए उसने सबसे पहले नंदिनी को बुलाने के बारे में सोचा। इप्सिता ने खुद से बात करते हुए कहा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी होगा। इप्सिता ये सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा नंदिनी का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव करते ही नंदिनी हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम, 2 दिनों में तुम्हारी सगाई, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मैं तो तेरा मैसेज देखकर ही बिल्कुल शॉक हो गई, मैं इतनी जल्दी वहां कैसे आ पाऊंगी? इप्सिता ने परेशान होकर कहा, पहले ही हम यहाँ पर एकदम अकेले हैं और एक तुम ही तो हमारी बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम भी इस वक्त हमारे साथ नहीं होगी तो कौन होगा? क्रमशः